کہ یہاں ہمارا یوسف پٹیل کا ہے, یہ خود ذکر فکر پہ آئے, ان سے ان کی والد صاحب ذکر فکر پہ آئیں, ان کے مشیرہ ذکر فکر پہ آئے, ان کے بھائی سارے ذکر فکر پہ آئے, داماد بہن کا میاں ذکر فکر پہ آیا, چاروں بیٹے ہیں ماشاء اللہ, چاروں بیٹے ذکر فکر پہ آئے. اللہ نے کتنا کرم کیا, یہ معمولی سعادت نہیں ہے, بہت بڑی سعادت ہے. اب ان کی باتیں سنیں. دس بجے ہیں, بعد ان کی موثر ہوگی.
کیا اس کا ساری باتیں تو سب کے سامنے
آپ
کیا سب
بتا رہے ہیں, بچے صاحب ذکر کرتے ہیں, اپنے والد صاحب کا حال سنا رہے ہیں. مولانا یوسف پٹیل کو سارے جانتے ہیں ماشاء اللہ, آپ غور سے دیکھ, کینیڈا کی جماعت میں ماشاء اللہ روح رواں ہیں اشرف مہوتی صاحب اور مولانا یوسف پٹیل صاحب, اور وہاں کے جو جمعیت علماء کینیڈا ہے, جمعیت علماء ہند بھی ہے, جمعیت علماء پاکستان بھی ہے, جمعیت علماء کینیڈا بھی ہے, اس کے نائب صدر.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد, معزز وبار محترم و مکرم حضرت جی دعوت برکاتہ, معزز علماء کرام, بزرگ اور دوستو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ مشائخ کی برکت سے اور بزرگوں کی برکت سے ہمیں جو کچھ ملا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے والد صاحب سہارنپور میں پڑھے ہیں, پڑھنے کے زمانے میں مشائخ اور بزرگوں کی خدمت میں جایا کرتے تھے. اس کے بعد پھر جو ہے 1947 میں ہمارے والد صاحب اور چچا نے سب سے پہلے چلہ لگایا, تبلیغ میں گئے اور چلہ لگایا, اور اس کے بعد پھر آ کر مدرسے کی خدمت میں لگ گئے, جماعت کی نصرت کرنا اور گھر میں بچوں کو بلا کر ان کو حافظ کرانا اور پھر ان کو باہر مدارس میں بھیج دینا. تو پوری زندگی اس طریقے سے خدمت کرتے رہے, اور خود بزرگوں کی خدمت میں جانا اور ان سے فیض حاصل کرنا. انہوں نے فیض حاصل کیا ہے شیخ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. والدہ کا خاندان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اونچا عنایت فرمایا. ہمارے نانا جو تھے وہ ابدال کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے. والدہ بیان کرتی ہے کہ روزانہ صبح 2 بجے رات کو اٹھ جاتے تھے, اٹھ کر مسجد چلے جاتے تھے اور فجر تک ذکر میں تلاوت میں مشغول رہتے تھے, اور وہ جب سوتے تھے تو والدہ فرماتی ہے کہ ہم ان کے سینے کے پاس کان لے جاتی تو ہمیں اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی, حالانکہ وہ سو رہے لیکن ان کے قلب جاری تھا. تو وہ جب نماز, وہ ٹیلر درزی کا کام کرتے تھے, مشین بناتے تھے, ریپیئر کرتے, اور درزی کا کام بھی کرتے تھے, دکان تھی ان کی مسجد کے سامنے. جب اذان ہوتی ہر چیز کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر دکان کھلی رکھ کر مسجد چلے جاتے. لوگ کہتے بھی تھے, چونکہ خاندانی نام ان کا دیندار تھا, تو کہا دیندار ماموں آپ ویسے دکان کھلی چھوڑ کر جاتے ہو؟ تو کہا جس کے حکم سے میں جا رہا ہوں وہ میری حفاظت کرے گا. تو کبھی ان کی دکان میں کوئی چوری نہیں ہوئی. تو نماز پڑھ کر اطمینان سے فارغ ہو کر پھر آتے تھے اور پھر اپنا کام کرتے تھے. علماء اور بزرگوں کی بہت خدمت کرتے تھے. اور آپ نے ابھی نام سنا شیخ احمد عفائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خاندان کے ایک شیخ جو ہے رادیر میں آئے تھے, ان کا قیام رادیر میں تھا, وہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور ان سے بھی فیض حاصل کیا کرتے تھے. شیخ احمد عفائی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک شیخ آئے تھے, ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. بہرحال ہمارے نانا کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. والدہ بچپن سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا تھا. والدہ فرماتی ہے کہ کوئی مہمان گھر میں آنے والا ہوتا تھا تو مجھے خواب کے ذریعے سے بتا دیا جاتا, میں والدہ کو بتا دیتی کہ آج مہمان آنے والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تجھے کیا معلوم, कहा देखो मेहमान आकर खड़े हो जाएंगे दरवाजे पर, अभी से तैयारी कर लो। तो वाकई ऐसा ही होता था, मेहमान आकर खड़े हो जाते। जब एक दफा तजुर्बा हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि बीवी जो कहती है वह सच कहती है। तो फिर दूसरी दफा कहा कि आज मेहमान आने वाले हैं, तो कहा बीवी ने कहा है तो जरूर मेहमान आकर रहेंगे। तो बचपन से सच्चे ख्वाब उनको आते थे। और बारहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत की ज़ियारत होती रहती थी। तो वालिद साहब जो है दुनिया से रूपोश हो गए थे। एक दफ़ा रमज़ान के महीने में घर से निकले और सूरत गए और वहाँ से मस्जिद से यकायक गायब हो गए। अब हमारे एक नाना वगैरह तलाश में है, तो किसी ने बताया कि जाओ फलां बुजुर्ग के पास जाओ। तो हमारे मामू उस बुजुर्ग के पास गए। मामू ने कहा रात यहाँ ठहरो, कल सुबह बताऊंगा। तो दूसरे दिन सुबह मामू ने को बुजुर्ग ने बताया कि भाई आपके वालिद साहब जो है वो अब्दाल के दर्जे पर पहुंच चुके हैं, दुनिया से रूपोश हो गए हैं। अब दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो जिंदा है, हयात है, फला जगह पर फला मस्जिद में है। आप जाओगे तो उनको पता चल जाएगा, वो वहां से भी चले जाएंगे। तो बहरहाल आप उनकी तलाश छोड़ दो। तो फिर उनकी तलाश छोड़ दी। उसके 10 साल के बाद फिर वालिदा ने ख्वाब देखा कि ख्वाब एक हीरा है कीमती, वो हीरा उनका गुम हो गया और गायब हो गया, और वालिदा तलाश कर रही है उस हीरे को। इसी हालत में जो बेदार हो गई, तो सुबह रांधेर के बहुत बड़े आलिम है, उन आलिम की खिदमत में गए वालिद साहब और वालिदा दोनों, और ये ख्वाब बयान किया। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ है। 10 साल के बाद, यानी गायब होने के 10 साल के बाद फिर वो तुम्हारे वालिद का, यानी हमारे नाना का इंतकाल हुआ है, अब तुम्हें जो कुछ फातिहा वगैरह करना हो तो करो। तो 10 साल तक इस तरीके से रूपोश जिंदगी गुजारते रहे। वालिदा अल्लाह सुबहानहु ताला ने बहुत नवाजा था। जब हजरत जी कनाडा तशरीफ लाए तो उसी बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वहां तशरीफ लाए और हमें बताया कि पीर साहब तशरीफ ला रहे, तब हमने कहा ठीक है। तो फिर हम रात को खाने में भी शरीक हो गए और पता चला कि जिक्र होगा। तो दूसरे दिन से ही सुबह हम, मैं, वालिदा और अहलिया, हम जिक्र में शरीक हो गए। तो पहले दिन से हजरत जी के साथ हैं, और रोजाना मैं तो शाम को जॉब पर होता था, मस्जिद में होता था, तो शाम के जिक्र में मैं शरीक नहीं हो सकता था, लेकिन वालिदा और अहलिया शाम के जिक्र में भी शरीक होती और सुबह के जिक्र में हम तीनों चलकर चले जाते थे और हजरत के साथ जिक्र करते। जिक्र के बाद फिर फजर की नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के इशराक तक हजरत के साथ हम ठहरते, फिर नाश्ता करके फिर हजरत आराम करते और मैं अपने काम के लिए निकल जाता। हजरत पूछते वालिदा को, तो वालिदा फरमाते हैं कि हाँ नूर नजर आवे, नूर नजर आवे,
नूर दिखता है।
हाँ नूर दिखता है। तो बहरहाल उनको नूर नजर आता था, दिखता था हर चीज। एक दफा वालिद साहब, वालिदा बीमार हो गए, ख्वाब वालिद साहब को ख्वाब में देखा। और तो वालिद साहब आए, कहा बीबी कैसी है? कहा मैं बहुत बीमार हूँ। कहा तुम ठीक हो जाओगे। तो तसल्ली दी और फिर वालिद साहब जो है वो खिड़की सी की तरफ से जाने लगे। तो वालिदा ने फरमाया कि ये तो खिड़की है, रास्ता तो इधर है। उन्होंने कहा हमें रास्ते की जरूरत नहीं। वो निकले और वो गायब हो गए। तो इस तरीके से वालिद साहब गायब हो गए। और फिर जब हम हज में गए तो वालिदा ने कहा कि अल्लाह तेरे किसी खास बंदे की मुझे ज़ियारत फरमा। तो किसी कोई खास बुजुर्ग की ज़ियारत उन्होंने उस वक्त की, जो जिनका नाम लेना अभी मैं मुनासिब नहीं समझता। तो उस बुजुर्ग के उन्होंने, वालिदा ने ज़ियारत भी की। उसके बाद फिर जब मदीना मुनव्वरा गए, वहां से फिर जब वापस कैनेडा जाने लगे तो वालिदा रो रही थी। तो मैंने कहा अम्मा क्यों रोते? तो कहा कि अब मेरा इरादा था कि मैं यही ठहर जाऊं, मैं तो वापस जा रही हूँ। तो उसी रात हुजूर सासम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। हुजूर तो देखा कि हुजूर सासम तशरीफ फरमा है और वालिदा सामने, हुजूर सासम काबा शरीफ में बैठे हुए हैं और वालिदा भी सामने आकर बैठ गए, एक औरत और कुरान शरीफ पढ़ रही थी। तो वालिदा ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं तो इरादा कर रही थी कि मैं यहाँ ही ठहर जाऊं, अब जाने का वक्त आ गया, तो अब मैं क्या करूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी पहली नजर काबा शरीफ पर पड़ी थी तो आपने क्या दुआ मांगी थी। तो वालिदा ने कहा, अल्लाह तेरे घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। तो कहा तो जाना पड़ेगा, फिर अल्लाह चाहेंगे तो दोबारा लाएंगे, तो अब तो जाना पड़ेगा। तो फिर जो वालिदा को तसल्ली हो गई। इस तरीके से और भी एक दो दफा ऐसे वाकयात पेश आए कि एक जमात आई थी, जमात के साथ वालिदा जाना चाहती थी, लेकिन वो जमात वालों ने कहा औरतें ज्यादा हो गई तो आप ठहर जाए। तो वालिदा गमगीन थी, तो वालिदा ने ख्वाब में देखा कि उस जमात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो वालिदा ने देखा उस जमात के मर्द, मैं भी साथ में हूँ उनके साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में है, और जो है वो जमात के सारे साथी मर्द औरतें जा रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस जमात के साथ है। तो वालिदा को तसल्ली देने के लिए क्या, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बहरहाल कई दफा ऐसा वालिदा ने ख्वाब देखा। तो बहरहाल हजरत तशरीफ लाए, हम हजरत के साथ जुड़ गए, अल्लाह ताला का बड़ा फजल और करम हुआ। तो ये बहुत बड़ी सआदत हमारे लिए कि हजरत का हमारे इलाके में आना और हमारी बिल्डिंग में आना, ये हमारे लिए जुड़ने का सबब बन गया। वरना टोरंटो में, कैनेडा में बहुत सारे उलमा आते हैं, आकर चले जाते हैं, हम जाते हैं उससे मुसाफा करते हैं, मुलाकातें करते हैं, और मुलाकात करके मुसाफा करके फिर हम अपने काम में लग जाते हैं, वो चले जाते हैं, फिर उनसे कोई ताल्लुक और रब्त नहीं रहता, तो उनसे फैज हासिल करने का भी कोई मौका नहीं रहता। तो मैं सबसे पहले हज़रत शेख ज़ाकिर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ था, और उनकी खानकाह हमें जाया करता था। उसके बाद जब हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया तो फिर हज़रत जी से बैत हुआ, हजरत जी का भी इंतकाल हो गया, तो फिर मैंने किसी से बैत नहीं की। मैंने कहा बैत का मकसद तो यह है कि फैज हासिल किया जावे। अब मैं यहाँ परदेश में हूँ, और कोई आता है तो चंद दिनों के लिए आते हैं, आकर बयान करके चले जाते हैं, तो फैज हासिल करने का कोई सवाल नहीं होता। तो 15-16 साल इसी तरीके से गुजर गए, मैंने किसी से बैत नहीं की। फिर जब हजरत तशरीफ लाए, और जब हजरत तशरीफ लाए तो रोजाना हजरत के साथ हमारा बैठना हुआ, कभी शाम के जिक्र में भी शरीक होते थे, सुबह के जिक्र में तो रोजाना हम होते थे और हजरत के साथ बैठते थे और जिक्र भी करते, चाय नाश्ता भी करते और हजरत की बातें सुनते रहते थे। तो फिर मैंने देखा कि देख अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरीन इंतजाम कर दिया। जो चीज मैं तलाश करता था, तलब करता था, तो वो चीज अल्लाह ने हमारे पास ही भेज दी। तो ऐसे शेख कामिल जिनके पास सारी नस्बतें मौजूद हो, हर चीज मौजूद हो, अब ऐसे शेख, और हजरत ने फरमाया कि मैं तो हर साल आऊंगा, तो उनके ये तो हमारा काम बन गया। हमें शेख के पास जाने के बजाय अल्लाह ने ये इंतजाम कर दिया कि शेख खुद हमारे पास आएंगे और हर साल आएंगे, और अपने खर्चे से आएंगे, हमें टिकट भी नहीं देनी पड़ेगी, और हमें कुछ करना भी नहीं, और मुफ्त में हमको जिक्र फिक्र सिखलाएंगे, और जिक्र फिक्र भी वो जो नक्शबंदी सिलसिले का, और वो भी ओवेसिया सिलसिले का जो सबसे आला है। हमने किताबें पढ़ी थी, और बचपन में हमारे घर नक्शबंदी सिलसिले के शेख आया करते थे, हमारे वालिद साहब भी नक्शबंदी सिलसिले के शेख के पास जाया करते थे, तो नक्शबंदी सिलसिले के बारे में हमें मालूम था, और किताबें भी पढ़ी थी, तो हमें मालूम था कि ये नक्शबंदी सिलसिला बहुत ऊंचा है और जो है बहुत ही मुबारक सिलसिला है। तो ये सिलसिला जब हमें घर बैठे मिल गया, और घर बैठे हमें शेख मिल गए, तो फिर हमने थान ली कि अब तो हमने हजरत को छोड़ना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अब जब हमने इसे हजरत के हाथ पर बैत कर ली, अब मुखालिफत शुरू हुई, अब उलमा टूट पड़े कि मौलवी यूसुफ तूने क्या कर लिया, कि एक ऐसे आदमी से जो पाकिस्तान का रहने वाला है, जो आलिम भी नहीं है और पता नहीं क्या क्या सिखाता है, क्या क्या बताता है, तू कैसे उसके हाथ पर बैत हो गया। बहरहाल लोगों ने बहुत मुखालिफत की, हजरत को भी मालूम है इस मुखालिफत का मसला। मैंने हजरत से दरख्वास्त भी की थी दुआ के बारे में, लेकिन मुखालिफत अपनी जगह होती रही, लोग करते रहे, लेकिन मैंने हजरत को नहीं छोड़े। मैंने कहा कि अब इससे बेहतर और कोई शख्सियत मुझे मिलने वाली नहीं है और उससे बढ़कर और कोई चीज मुझे मिलने वाली नहीं है, तो मैंने अब हजरत को नहीं छोड़ना। अब हजरत के दामन को मैंने मजबूती से पकड़ लिया और हजरत भी दुआ करते रहे हमारे लिए। मुखालिफत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, अभी भी मुखालिफत तो है, गई नहीं, लेकिन अब वो चीज नहीं रही जो पहले थी हजरत की तवज्जो और दुआओं की बरकत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जब हम जुड़ गए, हमारी वालिदा जुड़ गई, तो फिर हमारा पूरा खानदान जुड़ गया, हमारी बहनें भी जुड़ गए, हमारे भाई भी जुड़ गए और हमारे जो है और रिश्तेदार भी सारे के सारे जुड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चार बेटे, चारों बेटे जुड़ गए और बेटी है वो भी जुड़ गई, दो बेटे आलिम है और माशाल्लाह वो भी जुड़ गए, तीसरा बेटा भी आलिम बन रहा है इंग्लैंड में, वो भी जब भी आता है हजरत की खिदमत में, जब इंग्लैंड जाते हैं तो वो इंग्लैंड हजरत की खिदमत में जाता है, तो इंग्लैंड में दूसरा बेटा इंग्लैंड में है तो वो इंग्लैंड जब जाते हैं तो वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं हजरत की खिदमत में। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सारे के सारे बेटे बेटी और इस तरीके से पूरा खानदान हजरत के साथ जुड़ गया। तो हजरत बार बार हमें फरमाए कि आपको ये जो कुछ मिला है आपके वालिदा की वजह से मिला है, तो अल्लाह ताला ने वालिदा को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। और हजरत जब 2 साल पहले कब्रिस्तान तशरीफ ले गए तो हजरत ने देखा कि वालिदा को अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि पूरे कैनेडा में, पूरे अमेरिका में, अमेरिका कैनेडा में किसी औरत को इतना ऊंचा मकाम नहीं मिला जो मकाम अल्लाह सुबहान व तआला ने वालिदा को इनायत फरमाया। ये सब हजरत के ज्योतियों के सदके हमें मिला है। तो हमें ये सब कुछ मिला है ये हजरत के सदके में मिला है, इसलिए हम अब हजरत को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हजरत राजी हो, नाराज हो, गुस्से हो, कुछ भी हो, हमने हजरत के दामन को नहीं छोड़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के सदके में ये सारी चीजें हमें मिली है, ये नक्शबंदिया सिलसिला और खास ये ओवैसिया सिलसिला, ये इतना ऊंचा और मुबारक सिलसिला है। कभी वक्त होगा तो इंशाल्लाह इस सिलसिले के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। अभी बात लंबी हो गई है, वक्त ज्यादा हो गया, मैं हजरत से गुस्ताखी और बेअदबी की माफी मांगता हूँ, अगर मैंने कोई लफ्ज ऐसा गुस्ताखी बेअदबी के बारे में कह दिया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ और हजरत से दुआ की दरख्वास्त करता
हूँ। चार बेटे हैं माशाल्लाह, मौलाना अनवर 10 रात में पूरा कुरान शरीफ सुनाया है, छोटे बेटे अब्दुल हई 10 रात में पूरा कुरान शरीफ कैनेडा में सुनाया, दो दोहा, बड़ी सादमंदी है। अभी अब्दुल हई बड़ा हो गया माशाल्लाह, अभी छोटा बच्चा ही है, जब बिल्कुल छोटा था, मासूम था, 10 साल का था, तो उसके इंशावत का ये आराम था, बहुत तेज इंशावत है, मुझे फिक्र पड़ जाए मेरे यार बच्चा है खुदा है मेरे, और माशाल्लाह इंग्लैंड पढ़ रहा है अल्लाह के वजह से, जब मैं जाता हूँ इंग्लैंड मुझे मिलने के लिए आता है, ये अल्लाह ताला की अनायत है जिस किसी को अता फरमाए। बोलो दोस्तों, दुनिया में चंद रोज़ा जिंदगी है ख़त्म हो जाने, जैसे मैंने कल गुजारिश किया है, ये शहर जो है इसको मजबूत पकड़ो बहुत। देखो ये बंदा कहे मुझे वसवसा नहीं आएगा, ये नामुमकिन है, वसवसा आएंगे। बंदा ये कहे मेरी मुखालफत नहीं होगी, ये नामुमकिन है, मुखालफत होगी। हर हक की अम्बिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत की इंतहा है, हम लोग कौन जूती हुई दूर दूर नहीं। तो ये चीजें हकानियत की निशानी होती है, इसे दिल बर्दाश्ता नहीं होना, हर मुखालफत पर और कवी होना है, हर वसवसे पर और मजबूत होना है। देखो ये सीधी सी बात है, कान खोल के सुनिएगा, हाय कान सारे कान खोल के सुनते हैं,
कान खोल दिया,
कान तो खुला है, दिल खुलना चाहिए।
हाय दिल तो खैर खुश नसीब है, खुलता है। मैं कान खोल के सुने, मुराद ही होती है कि आंखें खोल के सुने, आंखें भी कान का काम करती हैं। आपने आंखें बंद की हो, कान खोले हो, तो इन कानों में कख नहीं जाता, नहीं सर, सो रहे हैं सारे, सबको नींद आ रही
है।
आंखें जब बंद हो तो कान का खुरापन
काम नहीं
ये वहम लोगों को था, मेरे कन्ना जी गल उड़ दी, मैं दिमाग सुनता तो मन सारा सुनता है, सारा सा खाक होता है, कोई असर नहीं होता। तो कानों के साथ आंखें भी सुनती हैं। सीधी सी बात यह है मूसा जी या उसा जी पहली और आखिरी कि अल्लाह ताला का जाती नाम है, सिफाती नाम नहीं है, जाती नाम है। बस कोई बस आए, कोई शैतान का इल्का हो, कोई मुखालफत हो, जैसे भी हो, वो काय के लिए होती है, वो सारी मुखालफत जितनी भी होती है ये बुलंदी दर्जात के लिए होती है, टेस्ट के फितर में नहीं डाला जाएगा। तुम क्या समझते हो हम डाल के देखेंगे, तो तुमने अल्लाह ताला के नाम की क्या कदर मंजरत की, क्या समझा इसको, क्या पहचान की इसकी। बाकी जितनी बातें हैं सारी ऐसे समझाई जाती हैं कि आप लोग हम सब लोग अल्लाह ताला के नाम को मजबूत से मजबूत पकड़ लें, ऐसा पकड़ लें कि बस बाकी हर से छूट जाए, अल्लाह ताला का नाम ना छूट ले पाए। नहीं समझ आई, अल्लाह ताला की याद तो ही है। अब आप बिशाक आंखें बंद करके सो जाना जाके।
शेर एक सुना रहे थे, शेर फरमा रहे थे आप।
कौन सा
शेर को मजबूती से बांध लेना फरमा रहे थे।
शेर तो बेशुमार हैं दिल के दर्द के, क्या बताऊं, कुछ नहीं आता ज्यादा, तकलीफ ज्यादा है, अभी निडाल बदन होता जा रहा है। और जब मैंने गुजारिश किया कि इस शेर को हर मुखालफत पर खुशी से, और हर मुखालफत जो है वो शैतान पैदा करेगा, दाएं बाएं आगे पीछे जाएगा, वो जितनी मुखालफत भी करे आप उतने कवि होते जाओ, मजा तब है, लुत्फ तब है, ना कि शायद मुखालफत की चीज पर आप बिदक जाओ या फिसल जाओ। अल्लाह ताला की ज़ात है तो हम सब के हाल में रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को अपने एक बंदों में शामिल फरमाए। सुबह इंशाल्लाह याद रहा चंद बातें गुजारिश करूंगा, अब क्या किया जाए, वक्त थोड़ा है। हमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद। اللهم زد نورنا وزد حضورنا وزد عشقنا وزد ذوقنا وزد شوقنا وزد محبتنا يا الله. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، انت ولينا في سفرنا وحضرنا في أهلنا وفي مالنا، عليك توكلنا. يا الله صب مالك الشفاء كاملا على رسولنا، فصلى الله تعالى على رسولنا أجمعين برحمته يا رب العالمين.